समय में इनके प्रिय गुरु भाई आ गए, अब वो नहीं है। हम ये बड़े होशियार बड़े रसिक व्यक्ति, मालपुआ रसगुल्ला और ये सब नहीं होने से इचोड़ काट डालना, इचोड़ बने
कच्चा कटहल
नहीं होने से, और तेल में डूबा हुआ और मसाला में डूबा हुआ होना चाहिए। तो वो आ गए एकादशी के दिन, मेरे जब आप गुरु भाई का सम्मान करते करें, उन्होंने वो चिंता कर रहे हैं और आंख बंद किए हुए पैरों पर पैर रख करके चिंता कुछ कर रहे हैं। इतने में ऊपर से एक गौरैया पक्षी ने, छोटी से चिड़िया होती है ना बंगला में क्या कहते हैं, चौड़ी, और इधर में गौरैया छोटी सी जो उठी चिंतू अपने मुख से काजनी कहां से एक पोटली ले आई कपड़े में बंधा हुआ और ऊपर से छोड़ दिया, नीचे गिर गया। तो छन्न सा कुछ बजा गुरु जी के सामने ही, गुरु जी ने हाथ से उठाया और देखा खुला तो छौं आना पैसा आया। बाबा छौं आना पैसे में एक पूरा परिवार का खाना पीना चल सकता था उस समय, 1942 की बात। उस समय छौं आना पैसा देकर के किसी शिष्य को भेज दिया, वो बाजार से रसगुल्ला और कुछ फल फूल और तरकारी ले आया और सब रसोई बनी और उन बच्चों को भी खिलाया और अपने आप भी। भगवान देखते हैं इसकी सेवा की वृत्ति और उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। उसी समय में एक घंटे के बाद में पियून ने कहा कि केशव महाराज है कोई, लोगों ने कहा यहाँ पर 100 रुपए का मनी ऑर्डर आया है। गुरु जी ने कहा 100 रुपए का मनी ऑर्डर ये दुख के समय कौन भेजेगा। इतने में देखा तो वो गिरी महाराज जी बर्मा से उन्होंने भेजा था, ये लोग बड़े अपने हृदय थे उन्होंने भेजा था। अब उस रुपये से लेकर के प्रचार आरंभ हुआ गंगा के इस पार और उस पार। उस समय हम लोग अभी नहीं थे, इसके कुछ दिनों के बाद में महाराज जी आ गए, राधानाथ जी आए, ये हैं राधानाथ दास, राधु राधु। इसके बाद में श्रीमन नारायण जी आ गए, गुरु जी ने नाम रख दिया गौर नारायण पर। हम लोग दोनों मिलकर के बावन महाराज जी थे, बावन महाराज मुहर्री और हम लोग सैनिक, कुछ नहीं जान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, बंगला भी नहीं बोलने जानता। और ये प्रचार में निकल करके गुरु जी महाराज जी जहाँ जाते थे वहां से चावल इत्यादि भिक्षा करके, एक समान चावल ये भिक्षा की, उस समय का एक समान साधारण नहीं, अकेले दुकेले, और मैं कुछ नहीं जानता तो हमको दे दिया उन्होंने लैंड एंड स्लाइड, और मैं भी एक दो आदमी को निकल करके चला गया जैसी टूटी फूटी भाषा में भी 300-200 रुपया ये तो बहुत रुपया, इसमें तो हमारा पूरा उत्सव हो जाए। छोटी सी सेवा आपको बहुत मानना ये वैष्णव का और गुरु का ये लक्षण। और गुरु का एक और लक्षण है, छोटी सी सेवा देख करके सब प्रसन्न होते हैं और यदि गलती करे तो कान मल देंगे, इनका इनसे पनी छनी रहती थी, सब इन पर विश्वास था। हमारे ऊपर में बामन महाराज जी के ऊपर में गुरु जी का विश्वास नहीं था, ये अभी काल के अभी नादान बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, इन पर विश्वास था कि ये जिस काम में भेज देंगे ये कर लाएगा। किंतु इनका ये मुश्किल, कोई बात मानेंगे नहीं सहज, तर्क भी तर्क करेंगे और इसलिए लड़ाई हो जाती। और हम लोग सिपाही थे बिना अस्त्र शस्त्र, कहने के पहले बस दौड़ करके कूद गए, उसमें पानी में डूब गए या शोरों में डूब, जैसा भी संभालने वाले ये लोग। ऐसे ऐसी बहुत घटनाएं हुई जब गुरु जी के आदेश के पहले ही हम लोग दौड़ गए जैसे ये काम करना है और पता नहीं कि हमको क्या करना है, पीछे से इन लोगों ने बताया कि ये काम करना। गुरु जी ने बहुत से काम, यदि वो नहीं आते, महाराज जी ने कहा कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय धारा ही लुप्त हो जाती। प्रभुपाद ने इनको 3 बार रात में स्वप्न दिया, संन्यास जल्दी लो, विनोद संन्यास लो, नहीं तो ये हमारा सारा धर्म मट्टी में मिल जाएगा। तीन बार कहने के बाद में तब इन्होंने कहाँ संन्यास लिया?
कठुआ
में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था वहीं पर संन्यास लिया। संन्यास माने क्या? तन से, मन से, वचन से हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। इसके लिए हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, मन को, तन को, वचन को, आत्मा को, सबको लगा देंगे और इसी के द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे, हरि गुरु वैष्णव की, महाप्रभु राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। हम कोई को कसर नहीं उठा रखेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा का नाम है सम्यक रूप से न्यास, त्रिदंड, इसका नाम संन्यास लिया। और तब से उन्होंने जहां जहां संप्रदाय की कोई भी बात हुई, एक बार हम लोग गए, ये भी महाशय जी, हम भी, बावन महाराज जी भी, उस समय गुरु महाराज जी के साथ में दल बल के साथ हम लोग चलते, हम लोग भी अकेले दुखेले नहीं चलते, अकेले दुखेले कोई जानता नहीं पहुंच गए, ऐसा नहीं, पहले चिट्ठी लिख करके सब जगह कर देंगे, साथ में 10 20 25 30 लाल कपड़े वाले रहेंगे, बढ़ने चाहिए, अपने आप प्रचार हो जाता। हम लोग मेदिनीपुर में गए, एक महीने के अंदर 40 जगहों में भाषण उनका हुआ गुरु जी का, बीच बीच में कदा कदा ये लोग भी हम लोग भी सब खड़े होते और भाषण करते, तो एक महीने में 40 जगह लगातार भाषण। एक जगह हम लोग गेहूं खली में गए, याद है गेहूं खली, सौती महाराज जी के शिष्य के घर पर, बड़े भारी जमींदार आदमी उनके यहाँ गए, गए तो भाषण हो रहा था, प्रवच पाठ, उसमें वो रामकृष्ण संप्रदाय के कुछ लोग वहां पर प्रतिष्ठित लोग थे, वो लोग आए, महाराज जी आप क्या भाषण दे रहे हैं? आजकल रामकृष्ण मिशन का विचार यही है, जो तो मत तो पथ, जितने पथ हैं वो सब भगवान के जाने के लिए पथ हैं, कोई गाड़ी से जाए, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटर से, कोई डेक्के से, बग्घी से, पैदल, साइकिल से, सब एक ही स्थान पर पहुंचेंगे, सब रास्ता एक ही जगह में मिलेगा, वो साबित में कहीं भी पत्र दो तो एक जगह मिल जाएगा। आकाश में यदि जाओ तो ऊपर जितना ही जाएंगे नीचे सब बराबर हो जाएगा। गुरु जी ने खूब जोर से खंडन किया। आकाश में जाने पर जिनकी आंखों में दम नहीं रहता वो देखते हैं कि पहाड़ और ये सब बराबर हो गया, वो मूर्ख हैं, उनकी आंखें टूटी हुई हैं, देखते नहीं। और जो ये कहते सब रास्ता जाता है एक साथ, तो दिल्ली में बैठ करके पंजाब के वहां पर यदि गाड़ी जा रही उसमें बैठ जाएंगे, कलकत्ता पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। एक हम मथुरा से चल रहे हैं, एक वाराणसी से आदमी चढ़ा, एक आदमी कहीं से चढ़ा, और ये मथुरा से हम लोग 50 आदमी चढ़े, सब लोग कलकत्ते में, जिसने जहां का टिकट लिया वहीं तो जाएगा, कोई कलकत्ता में नहीं जाने के लिए कलकत्ता सब नहीं जाएंगे, वाराणसी वाले वाराणसी, कोई मुगलसराय, कोई इलाहाबाद में उतर जाएगा, जिसको जाना है इलाहाबाद वहां वो पहुंचेगा, सभी लोग नहीं पहुंचेंगे। चिट्ठी जहां पर एड्रेस डालो एक ही पोस्ट ऑफिस में 50 एड्रेस लिख करके सब एक जगह जाएगा, कहां जाएगा? लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा ये विचार करते हैं। वास्तविक में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है भगवान का भजन करने से भगवान के यहाँ पहुंचेंगे, और सब रास्ते वहां पर नहीं जाएंगे, वो बीच में कहीं जाएंगे, कोई कोई ऐसे रास्ते हैं जो जहन्नम में ले जाएंगे, सभी भगवान नहीं है। इस तरह से उन्होंने जब भाषण दिया तो उन लोगों ने कहा अच्छा एक दिन निर्धारित कीजिए, हम लोग अपने मठों से बुलाएंगे बड़े बड़े पंडितों को और आपसे साक्षात को। गुरु जी ने कहा कोई एक भी हमारा नाम सुनेंगे तो नहीं आएंगे, आज हम बेलूर मठ में जा रहे हैं, वहां का सबसे बड़ा मठ, अच्छा तो जाओ हम खर्चा देते हैं, उनको बुला लाओ। गुरु जी ने पापड़ से निकाल करके रुपया देने लगे, नहीं नहीं रुपया हमारे पास में, हम ले आएंगे, परसों यहाँ पर मीटिंग होगी और उसमें ये साक्षात होगा, किंतु जो मैं कह दिया वो आएंगे नहीं, जाओ तुम ले आओ। सचमुच में वो गए, और गए तो उन लोगों ने कहा जो हम नहीं जाएंगे वहां, गौड़ीय मठ से हम लोग नहीं जुड़ सकते। अंत में वो लोग नहीं आए, और फिर गुरु जी वहां पर रहे और सब लोगों का, हम लोगों का भाषण हुआ, समस्त गांव बदल करके गुरु जी का विचार ग्रहण कर, इसलिए ऐसे पुरंदर वक्ता भी थे, पुरंदर लेखक भी थे, व्यक्तित्व के धनी थे, परम उदार थे, जहाँ और लोगों के लिए भयानक सिंह के समान थे। और हम लोग क्या करते, हम लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न करते, अभी नए आए हैं, बल्कि कभी कभी इनके साथ में विवाद लग जाता है, जाओ पुस्तक देख लो। और हम लोग जब जाते तरह तरह से तर्क वितर्क करके जब ही मिलते, अपने बच्चे जैसे उनसे पूछते और सबका प्रश्न हंसते हुए पूछे, कभी कभी पीछे तो ऐसे वो हो गए कि जितने ये पर्यटक महाराज और सब जो बच्चे थे, हम लोग तो कुछ मर्यादा भी देते, वो लोग उनके खाट पर भी बैठ जाते और पैर दबा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनसे मिलजुल करके मानो उनके नाती हैं, ऐसे बातचीत भी करते। इस प्रकार से वो मट्टी के आदमी वो बन गए। इस प्रकार से नवद्वीप उन्होंने 9 चूड़े का मंदिर बनाया और 9 खंड बनाया। एक खंड बना श्री ठाकुर जी का, एक बना कीर्तन हॉल, एक बना प्रेस वाला विभाग, बृहद मृदंग उसका नाम रखा, और खोलकर ताल वाला हरि कीर्तन का एक नाट्य मंदिर, ठाकुर जी का विभाग एक गोवर्धन खंड, गोवर्धन मैंने क्या, जहाँ पर गायों का वर्धन हो करके ठाकुर जी के लिए दूध होता, और एक बनाया सेवक खंड और
ज्ञानखंड,
और अंतिम बनाया ज्ञानखंड। ज्ञानखंड बनाया दक्षिण में और सब दिशाओं में, तो ये बना और वो बनाया पूर्व दिशा में, बना था बृहद मृदंग अर्थात प्रेस, और दक्षिण खंड में बना। दक्षिण खंड किसको कहते हैं, जहाँ लोग आदमी चट्टी इत्यादि करते हैं। जम का दरवाजा किधर होता है, तो इसलिए दक्षिण की तरफ में उन्होंने बनाया पैखाना, जहाँ पर हम लोगों ने आज कम से कम तो 60-70 एक साथ में विशाल बनाया है, तो उसको नाम रखा ज्ञान खंड। भक्ति के लिए जो अवर्जनाएं चीजें हैं वो है ज्ञान, इसलिए ज्ञान खंड उसका नाम दिया। इस तरह से एक बार यहाँ आए वृंदावन में, हरी सभा में उठ करके खड़े हो गए, रामकृष्ण के और सब लोग यहाँ पर आए हुए थे, उठ करके जब भाषण देने लगे तो रामकृष्ण मिशन के जो बड़े स्वामी जी थे उठ करके माधव महाराज जी के पास में गए, महाराज जी इनको ऐसा कहने से रोकिए, हम लोगों का तो ये बहुत खंडन कर रहे हैं, तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर तो सब सद्भावना से हम लोग आए हैं, कहे मैं नहीं कर सकता, आप ही यदि कहिए, ये हमारे गुरु भाई हैं, और यदि एक कहेंगे तो 10 सुना देंगे हमको, और आप जाइए जरा कहिए तो देखिए जैसे आपको सुना, आप चुपचाप बैठ करके सुन लीजिए और चुपचाप चले, प्रतिवाद मत करेंगे, नहीं तो न जाने क्या कर देगा ये। अंत में वो चुपचाप चले गए। स्पष्ट वक्ता थे, कहते थे कि 2 प्रकार के विचार हैं, एक विचार है सत्तम ब्रुयात, प्रियम ब्रुयात, मां ब्रुयात, अप्रियम सत्तम। क्या माने प्रियम ब्रुयात, प्रिय बोलो, सत्य भी बोलो, किंतु यदि सत्य बोलने से प्रियत्व की हानि होती है तो ऐसा सत्य बोलो। गुरु जी कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, सत्यम ब्रुयात, कठोर सत्यम ब्रुयात, यदि वो सत्य है और इसे समाज का कल्याण होगा तो इसी से होगा, इसलिए सत्य बोलो, कठोर सत्य भी है तो उसको बोलो, और नहीं तो प्रचार इत्यादि क्या होगा। इसलिए जहां भी जाते थे हम लोग आसाम में गए, हो गया, यही तो हम लोग प्रसाद दे रहे हैं इन लोग, आसाम में गए ये महाराज जी अपने साथ में ये ले गए अपनी नोटबुक, और वहां पर शंकर देव का समाज, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे और भजन करेंगे, और कृष्ण को अकेला मानेंगे, राधा जी को नहीं मानेंगे। बस गुरु जी ने वहां पर कहा जिन नालियों से पेशाब और पैखाना मल मूत्र जाता है और मांस खाते हैं वो नाली है गंदी नाली, ठाकुर जी का प्रसाद है वो लेना चाहिए, और वो तो जिस मुख से मांस मछली जाती है वो तो गंदी नाली है। बट भड़क और पत्थर चलाने लगे, हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान से इसका कोई प्रमाण है। गुरु जी ने इनके तरफ में इशारा किया दिया और ये उठ गए, उठ करके अपना नोटबुक से महाप्रभु के संबंध में जितना प्रमाण था बोलने लग गए। अब तो देखा जी ये प्रमाण दे रहे हैं। उस समय हो हल्ला करके पत्थर चलाने, गुरु जी ने कहा पत्थर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, तुम लोग समझते जो हमारे घर में आ गए हैं पत्थर से डर जाएंगे, अरे बम से और गोली से नहीं डरते हम लोग, प्राण से जाएगा एक बार हम लोग से, हम जो बात है वो हम लोग कहेंगे। एनार्किस्ट का वो लीडर था गुरु महाराज, जब ऐसा जोर से बोला तब तो एकदम शांत होने की जरूरत, और गांव वाले आधे आदमी हम लोगों के तरफ से लठिया और पत्थर लेकर के खड़े हो गए, बस वो लोग चुपचाप जहां का था फिर शांत हो गया। इसके बाद विभाषण दे करके हम लोग लौट आए। कभी भी गुरु जी डरने वाले डरते नहीं थे किसी, डरना किस चिड़िया का नाम है वो नहीं जानते। हम लोगों से भी ऐसे करते तो हम लोग में उतना तो नहीं किंतु कुछ है, यदि कुछ हो जाएगा तो आगे चलेंगे, कभी भले ही लाठी टूट जाए कोई बात नहीं। विचार में भी ऐसे ही, यदि ऐसा नहीं हो तो प्रचार नहीं हो, इसलिए बातों का धनी भी सब प्रकार से साहस भी होना चाहिए और देखने भी वैसे चाहिए। गुरु जी महाराज जी आए जैसे प्रभुपाद जी आए तो उनके परिकर जुट गए, तो हमारे गुरु जी के भी ऐसे ही लोग कुछ परिकर जुटे हैं। तो इतने अल्प समय में वैसा प्रचार, गुरु जी के पास में न एक शिष्य था न एक पैसा था, अधेली दमड़ी कुछ नहीं थी, किंतु थोड़े दिनों के का बाद भारतवर्ष में समस्त सर्वत्र उन्होंने मठ स्थापित किया, जिसमें मथुरा का नाम, मथुरा जी का मठ गुरु जी का विशेष प्यारा था। इसका नाम क्या रखा?
केशव जी
गौड़ीय मठ। किस लिए रखा? कई लोग समझेंगे तो नहीं, अच्छा ठीक है, हमारे आराध्य देव यहाँ के केशव जी हैं, इसलिए केशव जी के नाम पर उन्होंने नाम रखा। लोगों ने कहा जा रहे ये तो अपने नाम के ऊपर मेरा नाम रखी, तो बात ऐसी नहीं ऐसी है। और यहाँ पर वर्ष में कुछ दिन रहते थे, प्रति वर्ष वर्ष आते थे, दो दो बार आते थे, और यहाँ पर विश्राम मर गया, यहाँ पर आकर के हिंदी भाषा तो जानते नहीं तभी कुछ बोलते थे, जैसे महाराज जी यहाँ आकर के कुछ रगड़ भगड़ कर और कुछ बोलते हैं ऐसे वो बोलते थे। इस प्रकार से समस्त भारत वर्ष में उन्होंने प्रचार किया। आज इनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि देने आए हैं। गुरु की निष्ठा वैसे ही होनी चाहिए जैसे उनमें थी। महिलाएं भी हैं तो लोग भी खूब रखना स्थली में प्रचार करेंगे, अपने भजन करेंगे और इसका संदेश सब लोगों के पास में समझाएंगे। चेतन महाप्रभु की वाणी सबसे अधिक श्रेष्ठ है, इसके लिए तैयार हो सके बच्चे लोग भी, तुम लोग भी तैयार हो, भजन करो और भजन करो, इससे बढ़ करके और कोई चीज नहीं है। इसलिए उत्साह के साथ में भजन करो, तब तो उनकी सेवा होगी, और नहीं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहने से केवल नहीं होगा, दोनों बातें सब होनी चाहिए। कलम का भी जोर रखो, अन्य तो हम लोगों के जाने के बाद एक तोसी पूज्य बात तोसी महाराज जी थे, कह रहे थे एक बार तुम लोग तीन चार आदमी हो, विशेष करके बांग महाराज जी टिपिकल महाराज मुझको देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, ये हम लोगों की अब सीढ़ी अब खत्म होने वाली है, जाने वाले तुम लोगों का भाषण विचार और लेखन सब देखते मैं बहुत ही आनंदित हूँ, तुम लोगों का आशीर्वाद करता हूँ कि हमारे बाद भी तुम लोग चलाएगा, नहीं तो तुम लोगों के बाद में ये पीढ़ी समाप्त हो न जाए, बाद में ऐसी होने भी की संभावना न हो, भगवान करे ऐसा। किंतु देखते हैं कि ऐसे विचारक लोग, उत्साही लोग और निर्भय सत्य के वक्ता लोग कम अब रह गए हैं, इसलिए ऐसा होने से हम गुरु जी की सेवा कर सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार हो सकता है। सच्ची संभाल में यही है कि उनके चरणों में हम इस प्रकार से रह सके, तभी हम जो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद। आज मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर वो कृपा करें, आप लोगों पर कृपा करें, आप लोग भी गुरुनिष्ठ होकर के, अभी हम लोगों के आचार्य पूज्यपाद बावन महाराज जी हैं, बड़े वक्ता भी अच्छे हैं, लेखक भी हैं, प्रचार भी खूब कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग हम लोग मिलकर के उनके अनुगत्य में ऐसी तरह से हम लोग जब तक जीवित हैं प्रचार कर सकें और गुरु जी महाराज जी की ध्वजा पताका सर्वत्र लेकर के चल सकें, तो यही हम लोगों की उनकी सच्ची सेवा होगी, यही कह करके हम अपना वक्तव्य। ऐसे घरों में जन्म ले और अपनी साधना जो अधूरी पूरी हुई थी, अधूरी थी, उसको पूरा करके बस जल्दी से चले जाते हैं। समस्त भक्तों के करीब 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 ऐसा देखा जाता है। ऐसे तो पक्ष किसी भी कुल में किसी निम्न कुल में भी आ जाते हैं वो दूसरी बात है, किंतु साधारण पक्ष ऐसा होता है। ये उच्च कुल में धनी गृह में भारत माता पिता के कुल में है। पिता जी जैसे धार्मिक थे, माता जी वैसे धार्मिक थे। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध योगी जो बाद में वैष्णव हो गए थे, उनके शिष्य परंपरा में थे। कौन योगी? विजय कृष्ण गोस्वामी बहुत प्रसिद्ध योगी थे। यहाँ तक कि विद्यासागर जब इस लोक को छोड़कर के जा रहे थे तो जाते अरे ये विद्यासागर जा रहा है, ये स्वर्ग को जा रहे हैं। देखिए उसी समय भक्तों ने कलकत्ते में टेलीफोन या कुछ किया तो उनको मालूम पड़ा कि ठीक उसी समय में जिस समय उन्होंने कहा था उसी समय में उनका परलोक पासवा हो जा रहा है। अंत में ये चैतन्य महाप्रभु के विचारों के फॉलोअर बने थे। उन्हीं के शिष्य के शिष्य हम लोगों के गुरु जी के पिताजी थे। बड़े शिष्य शांत स्वभाव के और धार्मिक। इनकी माता जी जमींदारी स्टाइल से चलती थी और जमींदारी सब कुछ वही देखती थी, जमींदार की लड़की थी इसलिए सब कुछ वही देखती थी। बच्चों पर भी बड़ा कंट्रोल करती थी, हमारे गुरु जी को कंट्रोल कर लेना सहज नहीं था तो उनको भी वो कंट्रोल करती थी। जब इस काम को विलंब हो गया कुछ देर भी तो पकड़ करके कान मलती, कहाँ रहा इतनी देर तक, कैसे देना होगा, काम को तुम कहाँ था। एक बार गुरु जी रात में 9-10 बजे आए बच्चे थे, इनका नाम भीम था, नाम तो विनोद था किंतु बड़े शिष्ट पुरुष ये थे। मैंने कहा जैसे आज तुमको घर में नहीं घुसने देंगे, तुम कहाँ था बतलाओ। बहुत कहने पर जब नहीं बतलाया तो कहा कि नहीं आज बतलाना होगा तुम कहाँ। कभी मैया हमें रात इसलिए हो गई कि हम लोगों की एक कमिटी बनी है बच्चों की स्कूल के लड़कों और हम लोग दिन में छिप करके ये देखते हैं आज किसके घर में खाना नहीं हुआ, भोजन नहीं हुआ, रसोई नहीं बनी और किसके घर में जाड़े के दिनों में कपड़े नहीं हैं, कौन दुखी व्यक्ति है। तो हम लोगों को जो तुम जो भैया पैसा देती हो ऐसे और जो लड़के हैं हम लोग खाते नहीं हैं वो पैसे, बस उसी से कुछ खरीद कर और उनको दे आते। आज एक विधवा थी उसके घर में कोई लड़का बाल बच्चा नहीं और कल से उसके घर में भोजन नहीं हुआ था और यह भार हमारे ऊपर में पड़ा था, मैंने इधर उधर से भीख मांग करके उसके लिए कुछ देवों के लिए अन्न और जो अपना पैसा था हमारा तुमने जो दिया था वो सब मिला करके आज उस बुढ़िया को खिला करके सब आने में हम दे दो। बस भैया के आंखों से आंसू आ गए और स्थापन करने के बदले उनको आनंदन का आसपास में सब कर हमारा बेटा है सबसे भैया उन पर अधिक शासन नहीं करते। बचपन में ही लोगों के प्रति कितनी दयालुता का भाव इनमें था, ऐसे ऐसे कितने ये सब हुए उनके जीवन में जो उपकार की भावना निष्पाप रूप में था। माता जी से भी इतने दिन तक नहीं बताया, किसी को भी नहीं मिलता। हम लोग तो यदि एक कुछ उपकार कर रहे हैं तो 10 लोगों से कहेंगे कि हमने ये किया वो किया, वो कुछ पिताजी इनके यद्यपि 5 लड़के थे, 5 पांडव और वो पांडु महाराज थे इनके पिता और इनके बड़े भाई उस समय के समय में जिए थे, उस समय का ग्रेजुएट होना बात माने रखता था। आज से करीब करीब इतना दिन हो गया, बहुत दिन पहले करीब करीब 90-91 वर्ष पहले की बात, और वो हाई स्कूल में एक मास्टर थे, साधारण मास्टर नहीं थे, बहुत नामी थे उनके बड़े, वही जिससे से गौरी मठ बाग बाजार कलकत्ता सेक्शन के आचार्य जैसे फक्की केवल और लौली महाराज जी का नाम, और बड़े विद्वान थे अंग्रेजी में बंगला में बहुत ही सुंदर भाषण देते, और लोग भी सब थे, किंतु इनके पिताजी इन्हीं को अधिक स्नेह करते थे, और मैया भी इनको स्नेह भी करती थी, शासन भी करती थी। तो पिताजी जी कहीं जाते यदि कहीं भागवत का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, कहीं कोई सम्मेलन नहीं होती धार्मिक, तो अंगुली अपना पकड़ा करके बच्चे को ले जाते, और यदि दूर होता तो अपने कंधे पर बैठा करके बच्चे को ले जाते, और बड़ी ध्यान से ये सुनता, छोटी अवस्था में ही तन्मय होकर के ऐसा देखा जाता है किसी किसी के जीवन में, तन्मयता कभी नहीं आती, अपने चित्त को पर छोड़ करके किसी एक विषय में लगा देना ये सहज बात नहीं, और किसी किसी का यह स्वाभाविक होता है कि अपने आप किसी एक विषय में अपने चित्त को लगा करके तन्मय हो जाता है। ये तन्मयता बहुत मूल्यवान है सबके लिए, वो अपने और जिसका ऐसा है वही किसी भी विषय में उन्नत हो सकता है, बड़ी तन्मयता के साथ में वो विकास होकर के उनकी मुख्य हो गए। पिताजी कुछ दिनों के बाद में अप्रकट हो गए, सारा संसार का भार मैया के ऊपर ले पड़ा, और मैया ने सब इनके ऊपर ले दिया। ये धीरे धीरे कॉलेज में आ गए, और कलकत्ते के पास में लिंगवा नामक स्थान था उत्तर पर, उत्तर पर कॉलेज में ये प्रवेश इन्होंने किया। उस समय में 16 वर्ष की अवस्था में उसी समय में इनकी एक तीसरी माँ थी बुआ जी, उनका नाम सरोज वासनी था, जिनके संबंध में मैं बहुत कुछ बदलाया करता हूँ, जो प्रभुपाद से उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि आप हमें दीक्षा दें, उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा नहीं देता, क्या जीवन नहीं है, क्या वो कृपा की पात्री नहीं है, क्या वो भजन करने का अधिकारी नहीं है, केवल कुछ लोगों को ही भगवान का भजन करने का अधिकार और टीका पट्टा उन्हीं को है, भाषा में तो नहीं कहा थी, तो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी विदुषी थी, विद्वान महिला थी, और बाकी इतनी ही कविता और पद इत्यादि बनाया करते थे, और बड़े बड़े सन्यासी पर उनको प्रणाम करते थे। तो वो एक बार आ रही थी नौ दिन परिक्रमा ने, तो ये 16 वर्ष का बच्चा बोला जी हम भी आपके साथ ले जाएंगे आपके गुरु जी का दर्शन करने के, तो कॉलेज से वहां पर आए, देखने में बड़े सुंदर दुकान, प्रभुपाद जी की पर दृष्टि पड़ी, और कितन के तरह उन्होंने अंगीकार। उसी समय में उनका हरिनाम तो हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं ये अभी कोई मठ अभी नहीं हुआ था, अभी केवल मायापुर में केवल मठ था, उन्होंने कहा कि मैं 9 दीप में 9 मठ करूंगा, और जितने भारतवर्ष में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े तीर्थ संस्थान हैं सब जगह मैं मठ करूंगा, और वहीं से शुद्ध भक्ति का प्रचार और चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार करूंगा। तो ये तो बड़ी मुख लगी थी सरोज वासनी की सीमा, इन्होंने कहा कटे हुए बिछौने पर सो करके लाख रुपए का स्वप्न देखना, बंगला में कुछ है ना, लाख का था स्वप्न देखना, तो नीचे बिछौना तक नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, और लाख रुपए का स्वप्न देख रहे हैं, आपके पास में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी और दूसरा तो कोई है ही नहीं, और सब जब हम मठ करेंगे कहां से, तो ये विनोद हमारा करेगा, समझूंगी मैं उस टाइम पे भी चीज घर तो चले गए कॉलेज गए प्रभु बाद विचार के मुख्य जो चैतन्य चैतामृत पढ़े थे ये चैतन्य महा चैतन्य चैतामृत साधारण पुस्तक नहीं है ये भागवत से कम नहीं भागवत पर जितनी भी टीकाएं हुई है बहुत टीकाएं हुई है संस्कृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पर टीका लिखा है और इसमें हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उज्ज्वल नीलमणि से लेकर स्वामी संदेश के आदि सबका इसमें दिया गया है तो बंगला की पुस्तक किंतु संस्कृत के पुस्तकों का अर्थ समझ लेना सहज है किंतु इस ग्रंथ का अर्थ समझना बहुत उन्नत भक्ति राज्य में जो उन्नत हुआ है वो समझ सकता है साधारण आदमी नहीं समझ सकते जिनको भक्ति स्वामी सिंधु उज्जल नीलमणि और सब ललित माधव विदग्ध माधव और सब ग्रंथों का जिसको ज्ञान नहीं है वो इसका अर्थ बना ही नहीं सकता है जैसे एक शब्द किंचित है क्या अर्थ लगाएगा किंचित वही अर्थ लगाएगा जो इन सब चीजों को पढ़ाया किस तरह से ऐसे ही एक चैतन्य चैतामृत ग्रंथ है तो उस समय एमए में